الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرف القرآن جلد نمبر 5 سے. اس میں ہم پیج نمبر 46 کے اوپر تھے. معارف و مسائل چل رہے ہیں ان آیات کے، آیات نمبر 21 سے لے کے 23، تین آیات کے ہی معارف و مسائل پڑھ رہے ہیں. آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، یعنی جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی طرف دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی، یعنی اس کو نصیحت کری. نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، کسی کا اچھا چاہنا، بھلا چاہنا، اس کو برائی کی طرف مت بلانا بلکہ اس کو نیکی کی طرف بلانا، اگرچہ کہ وہ آپ کو برائی کی طرف بلا رہا ہے. تو ایسے مشکل سچویشن کے اندر بھی اپنے منصب کا حق ادا کر دیا کہ نبی کا کام تو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا ہوتا ہے. تو لیکن اس کے لیے آپ نے کیا اسلوب استعمال کیا، کیا طریقہ استعمال کیا، ایسی بات کری کہ جس سے کہ زلیخا ریلیٹ کر سکتی تھی، بالکل موقع کی مناسبت سے بات کری اور مخاطب کے احوال کے حساب سے بات کری. ٹھیک ہے، موقع کی مناسبت سے بات کری اور مخاطب کے احوال کے حساب سے بات کری. ٹھیک ہے، جو کہ اس کے دل پہ جا کر کے لگے، جس سے کہ اس کو فائدہ ہو، جس کو کہ وہ سمجھ سکے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ذمے کیا کام ہے؟ ہمارے ذمے بھی یہی کام ہے نا، یعنی ایک ایمان والے کے، نبی علیہ السلام السلام کے امتی کے ذمے یہی کام ہے جو کہ ہم نے اپنی نبی علیہ السلام السلام سے ورثے میں لیا ہے. نبی علیہ السلام السلام سے وراثت میں اس امت نے کیا کام لیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام. وما علینا الا البلاغ المبین، یہ نبیوں کا ارشاد تھا، ہمارے ذمے کچھ نہیں سوائے بلاغ المبین، کھلی بات کو پہنچا دینا یا بات کو کھول کھول کر کے بیان کر دینا. ٹھیک ہے، تو بھائی ہم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہی ہیں تو ہم نے بھی تو وہی کام کر رہے ہیں نا. اب جو آپ میں سے ماشاءاللہ تبلیغی بھائیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا آپ خود تبلیغی بھائی ہیں تو یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا لیکن نبیوں کی دعوت کا کام تو بند نہیں ہوا نا. دعوت کا کام تو ابھی تک جاری ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا. تو دعوت کا کام ایسے ہی تو کرنا ہے نا جیسے نبیوں نے کیا تھا، بلاغ المبین کے ذریعے سے. یہ تو نہیں کہ بس اپنے اپنے جو بس کیا کہتے ہیں سر پہ سے اتار دینا ہے نا، اپنے ذمے سے جو ہے وہ کسی چیز کو اتار دینا، بس اگلے بندے کے سر پہ یعنی ڈال دینا اس کو، اب تم جانو تمہارا کام جانے، بس میرا اور اس سے کوئی زیادہ واسطہ نہیں ہے. نہیں، بلکہ میرا کام صرف یہ نہیں ہے کہ میں آگے جو بات ہے اس کو ایز اٹ از پہنچا دوں، بلکہ اس کو میں ایکسپلین بھی کروں، اس کو میں آپ کے لیے ریلیٹیبل بھی بناؤں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈسکشن ہماری آخری کلاس کے اندر چل رہی تھی. تو اس میں تھوڑی سی باتیں مزید تو کافی آلریڈی ہو چکی ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا اور اس کے اندر تفصیل میں اگر ہم جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار بیان فرمایا نا، چار جگہوں پر تو بیان فرمایا نا، کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی ہی، ٹھیک ہے، کہ وہ آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے، تو آیات کی تلاوت کرنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی تلاوت کرنا، تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلا یتلو، تلا یتلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ تک کوئی چیز پہنچی ہے نا ویسے ہی اس کو آگے بیان کر دینا. ٹھیک ہے، اس کو تلاوت کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو कुरान मजीद की आयात की तिलावत करके उनको जो है वो आगे पहुंचा देना, जो सुनने वाले हैं वो कुरान मजीद को पढ़ने का तरीका भी सीख जाए, ठीक है, कुरान मजीद के अल्फाज से भी वाकिफ हो जाए, ठीक है, कुरान मजीद की किराअत से वाकिफ हो जाए, ठीक है, और जितने अल्फाज उनके समझ में आ सकते हैं वो उनके समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो कुरान मजीद के अंदर जो बहुत ही सिंपल चीजें हैं जिनकी के आपको, यानी एक कम से कम एक अरबी जुबान समझने वाले को, फुसहा अरबी जुबान समझने वाले को बहुत ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं पड़ती, तशरीह की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या है, कुरान मजीद के अंदर जो यानी जो 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 वाकयात हैं, ठीक है, या जो आखिरत के हालात हैं, ठीक है, जिनसे के अल्लाह ताला ने इंसानों को जन्नत का शौक दिलवाया है या जहन्नुम का खौफ दिलवाया है, ठीक है, तो ये जो आयात हैं ये एक अरबी जुबान समझने वाले को बस आप पढ़ के सुना दें, उसको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। आजकल की अरबी वाला नहीं, बल्कि जिसको कि कुरान मजीद की अरबी आती हो, हदीस मुबारक की अरबी आती हो, उसको बस तिलावत से जो है वो मानी भी समझ में आ जाएंगे। हाँ, जो जो मसाइले फिका होते हैं वो मसाइले फिका जो है वो सिर्फ अरबी जुबान की बुनियाद पे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन बाकी तो तरगीब वाली जो आयात है वो तो आ जाती है ना। तो यतलू अलैहिम आयात ही, ठीक है, आयात ही मीन्स साइंस, आयात का जो इन्होंने सवाल किया डायरेक्ट मैसेज में तो बाकी लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो आयात का लिटरल ट्रांसलेशन जो है वो साइंस है, ठीक है, निशानियां, लेकिन निशानियों की तिलावत नहीं करते, कि जैसे दरख्त भी अल्लाह ताला की एक निशानी है ना, सूरज भी अल्लाह ताला की एक निशानी है, और जमीन में मिट्टी पत्थर पहाड़ ऊंट, राइट, अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत, ये सारी की सारी अल्लाह ताला की निशानी है, लेकिन क्या इन निशानियों की आप तिलावत करते हैं? तिलावत करना एक कंप्लीटली डिफरेंट यानी काम है। तो तिलावत के लफ्ज ने बात डिस्क्राइब कर दी कि यहां पर अल्लाह ताला की बाकी निशानियों की बात नहीं हो रही, यहां पर कुरान मजीद की जो आयात हैं, कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि तिलावत सिर्फ उन्हीं की जाती है, ठीक है। तो इसमें आयात का मतलब जनरल मतलब नहीं है, बल्कि स्पेसिफिकली कुरान मजीद के अल्फाज मुराद हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद जो दूसरा नबी अलैहिस्सलाम का बेसत का मकसद, वो युजक्की हिम, ठीक है, युजक्की हिम का मतलब क्या होता है कि इखलाकी इस्लाह करना, तजकिया करना, यानी बुराइयों को दूर करने में उनकी रहनुमाई करना, बुराइयों को दूर करने में, ठीक है, इस अमल को इस्लाह का अमल कहते हैं, इस्लाह, और करने वाला मुसलह कहलाता है, ठीक है। तो मुसलह का काम क्या है कि गलती की इसलाह करना, और गलती की इसलाह के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है कि गलती को डिफाइन करना कि भाई क्या चीज गलत है, ठीक है ना, क्या चीज गलत है। अगर किसी को ये डेफिनेशन ही नहीं पता कि गलत क्या है और सही क्या है, तो उसके आप कैसे इसलाह करेंगे, उसको तो पहले आपको गलती की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी ना कि भाई फलाना फलाना काम जो है वो तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, और फिर उसकी उस गलती का नुकसान उसके सामने बयान करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप ये गलत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं गलत कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता तो मैं करता रहूं, नहीं भाई, ये नुकसानदेह चीज है, इसका तुम्हें दुनिया में नुकसान हो रहा है, इसका तुम्हें आखिरत में नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो बुराई को जो है वो नुकसानदेह बना करके उसके सामने प्रेजेंट करना, और फिर उसके बाद जब वो कन्विंस हो जाए कि हाँ जी ये चीज मेरे लिए नुकसानदेह, तो अब उसको उसका इलाज बताना, ठीक है ना, उसका इलाज बताना, उसकी इस्लाह का तरीका बताना, ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो इखलाकी इस्लाह या तजकिया के काम के अंदर कवर हो जाता है। वो युजक्की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत का दूसरा मकसद वो युजक्की है, इसके अंदर ये इस्लाह का सारा काम आ जाता है, ठीक है। और फिर तीसरा मकसद था वो वयुअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तालीम देना, इल्म इल्म सिखाना, इल्म सिखाने के अंदर सिर्फ जो है वो तिलावत कर देना नहीं है कि तिलावत करने से अब तुम खुद ही अपने अरबी जुबान की बुनियाद पर उस बात को समझ लेना, नहीं, बल्कि उसको तुम उसको एक्सप्लेन भी करना, इसके अंदर जो है वो तजवीद के उसूल भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई सही तरीके से कैसे तिलावत की जाती है, किस लफ्ज को कैसे बयान करना है, किसको मोटा पढ़ना है, किसको पतला पढ़ना है, किसको लंबा खींचना है, किसको जो है वो कम खींचना है, राइट, किसकी मखरज जो है वो कहाँ से निकालना है, किसका मखरज कहाँ पर है, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर जो है वो यानी फिका भी आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर फिका भी आ जाता है कि जी जो जो शरीयत के अहकाम हैं वो कुरान मजीद की आयात से कैसे अखज किए जाते हैं, ठीक है। तो जिसको एकेडमिक्स भी कह सकते हैं, एकेडमिक्स, ठीक है, मसाइल के और अहकाम, मसाइल बयान करना, अहकाम को एक्सप्लेन करना। तो युअल्लिमुहुमुल किताब तीसरा मकसद है, ये उम्मत ने नबी अलैहिस्सलाम से ये भी विरासत में लिया है। और आखिरी क्या है, वल हिक्मा, हिक्मा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा ऑप्टिमल तरीका किसी भी काम को करने का, सबसे बेहतरीन, सबसे ऑप्टिमल, सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने का जो तरीका है वो सुन्नत तरीका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को हमें हमारे लिए मॉडल बना करके भेजा ना, ठीक है। तो भाई मॉडल जो है वो परफेक्ट होना चाहिए ना हर एक के लिए, यानी सबसे ज्यादा फायदेमंद, यानी ये मॉडल जो है वो ऐसा तो नहीं होता कि आप जो है वो कोई कम बेनिफिट वाले तरीके को भी आप मॉडल बना करके पेश कर दें, या अफरात और तफरीत जिसके अंदर मौजूद हो, तो वो तो आइडियल मॉडल नहीं हो सकता ना। आइडियल मॉडल तो वही हो सकता है जिसके अंदर ना अफरात हो ना तफरीत हो, बल्कि उसके अंदर जो है फायदा ही फायदा हो। तो वो क्या है, उसी को तो सुन्नत कहते हैं, ठीक है। तो गुनाह से बचाने के लिए हमें इस वाले यानी रोल को प्ले करना पड़ेगा, जिसको इस्लाह वाला रोल कहते हैं। इस्लाह वाले रोल के लिए जाहिर है बुराई, ये सारी बातें हो चुकी कि बुराई की डेफिनेशन, बुराई को जो है वो नुकसानदेह बना करके पेश करना और फिर बुराई का इलाज का तरीका बताना, ठीक है। तो जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून, राइट, अपने पालने वाले के साथ जो खयानत करता है ये बुरी चीज है, ये जुल्म है, ठीक है। अपने पालने वाले, अपने अपने साथ एहसान करने वाले के साथ तुमने खयानत करी उसकी अमानत के अंदर, तो ये जुल्म है। और जुल्म का क्या नुकसान है, ला युफ्लिहु, फलाह नहीं पा सकता जुल्म करने वाला, ला युफ्लिहुज़्ज़ालिम, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पे कौन सा वाला काम कर रहे हैं, इस्लाह वाला काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस्लाह वाले काम के लिए ये वाला जुल्म वाला एस्पेक्ट जो है ना इसको सामने रखना पड़ता है। इस्लाह वाला काम ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी को कहें कि तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, अगर तो अगर कोई उसूल से हट करके भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो जो कर रहे हो, ठीक है। ऐसे इस्लाह वाला काम नहीं किया जा सकता, इस्लाह वाले काम के लिए तो बुराई का आईना दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा बुराई को, ठीक है। और फिर दूसरे भी हमने एक तरीके से इस बात को पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि भाई ये जो आप दीन की दावत देते हैं तो दीन तो एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, और दीन तो एक यानी एक सोल्यूशन है, ठीक है ना, इट्स अ प्रोडक्ट विद ए सोल्यूशन दैट कम्स विद ए सोल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट और इस सोल्यूशन को आपने सेल करना है, सेल करना है ना, तो सेल करने के लिए आप मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट और अपने सोल्यूशन की कोई नीड क्रिएट करते हैं ना, नीड क्रिएट करते हैं ना। आप ये तो नहीं करते कि भाई तुम्हारे पास जो है वो बहुत अच्छा है, राइट, द सोल्यूशन दैट यू ऑलरेडी हैव इज गुड इनफ फॉर यू, इज सफिशियंट फॉर यू, इट फुलफिल्स ऑल योर नीड्स, ऐसा तो नहीं आप कहते ना। तो अगर दीन के प्रोडक्ट को आप सेल करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जिस प्रोडक्ट को उन्होंने पहले से अपनाया हुआ है, जिस सोल्यूशन को उन्होंने पहले से सोल्यूशन समझा हुआ है, आपको पहले तो उसका इनकार करना पड़ेगा ना, ला इलाहा, पहले ला की तलवार के नीचे ला करके उसको जबाह करना पड़ेगा कि तुमने जो झूठे माबूद बनाए हुए हैं और झूठे माबूदों के जो झूठे पैगंबरों के बताए हुए तरीके तुमने इस्तेमाल किए हुए हैं, ये नहीं है तुम्हारी फलाह का तरीका, ये तुम्हारी फलाह का के जामिन नहीं है, ठीक है। अगर सेल्समैन, सेल्समैन जाकर के लोगों को जो उनके एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में खुश कर दे, तो क्या कोई इसका प्रोडक्ट और इसका सॉल्यूशन लेने के लिए तैयार होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों भाई, व्हाई शुड आई गो फॉर अ चेंज? व्हाई शुड आई गो फॉर अ चेंज व्हेन द थिंग दैट आई हैव इज गुड इनफ फॉर मी, सफिशियंट फॉर मी? व्हाई शुड आई गो फॉर अ चेंज? राइट भाई, चेंज जो है ये कोई आसान चीज तो नहीं होती। आपकी जिंदगी एक अच्छी भली चल रही है और आप बैठे बैठाए का जो है वो कोई नई चीज लेकर के आ जाए, तो फिर उसके अंदर एडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है ना। उसके लिए जो है वो आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को आपको एडॉप्ट करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आप नया नया सोल्यूशन है ना, जो आईटी वाले हैं वो जहाँ कहीं जाकर के उन्होंने डिप्लॉयमेंट करी भी है अपने नए सोल्यूशन के लिए, तो उनको पता है कि ये आसान काम नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मुसलेह साहब वो आईना दिखाने का काम खत्म कर दें और लोगों को उनकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन से खुश करना शुरू कर दें, तो फिर क्या वो मुसलेह का काम अदा कर रहे हैं? क्या वो मुसलेह का काम कर रहे हैं? क्या वो इस्लाह का काम कर रहे हैं? नहीं, इस्लाह का काम तो अब खत्म हो गया, इसका मतलब है। ठीक है ना, अब तो आप लोगों को खुश कर रहे हैं, उनके जो भी उनके पास है उसके बारे में उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मुतमईन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी तेरे बहर की मौजों में इस्तेराब नहीं, तेरे बहर की मौजों में इस्तेराब नहीं। ठीक है ना, तो पहले तूफान से आशना करना पड़ता है। ठीक है, तेरे बहर की मौजों में कुछ इस्तेराब होगा तब तू जाकर के किसी तब्दीली के लिए तैयार होगा। बहरहाल, तो ये चंद बातें थी जो कि दावत और तबलीग के बारे में बड़ी अहम है। हम अक्सर बस ये रोना रोते हैं कि लोग हमारी बात नहीं सुनते, लोगों को हम फलानी चीज बताते हैं तो वो आगे से जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नहीं, ये दीन नहीं चाहिए मुझे। या लोग जो है वो आगे से कोई बेवकूफी की बात करके, अच्छा हम खाली दुआएं करते रहे है ना और कुछ करें ना, और तुम जो है वो तुम हमें बस उल्टी सीधी जो है वो क्या कहते हैं, लारे लप्पे देते रहते हो, हमारे कराची में कहते हैं लारे लप्पे देते रहते हो। ठीक है, या उल्टी सीधी बस ऐसी लोरियां देते रहते हो। ठीक है, तो हम हमें बड़ा ये इसके ऊपर ना इतराज होता है कि लोग हमारी बात नहीं सुनते, लोग हमारी बात नहीं सुनते। भाई हमने अपना काम कम से कम किया है कि नहीं किया है? हम भी तो अपना काम नहीं कर रहे हैं ना, हम अपना सही काम तो करें। ठीक है, इस्ला वर्सेस ला रहमी इन दिस कॉन्टेक्स्ट हाउ कैन वी डू दावा, प्लीज एडवाइस। इस्ला वर्सेस ला रहमी, इस्ला वर्सेस सिला रहमी मामला वो बिल्कुल डिफरेंट बात हो रही थी। नहीं, आई डोंट थिंक आप इससे, खैर थोड़ा सा आपको तफसील बयान करनी पड़ेगी अपने सवाल की, तब जो है फिर या जो जवाब देने के काबिल हो शायद। इस्ला वर्सेस सिला रहमी तो मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ता कि मैंने इस तरीके से बात करी थी। बहरहाल आगे पढ़ते हैं, आप अगर उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकें तो हम देखेंगे उसको इंशाल्लाह। तो आगे फरमाते हैं कि इस जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को अपना रब फरमाया, हालांकि ये लफ्ज अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है, रब का लफ्ज। ठीक है, रब्बुल बैत आप कह सकते हैं कि घर का पालने वाला, ठीक है ना, जो बड़ा होता है घर का मर्द होता है उसको रब्बुल बैत कहा जाता है। उसी तरह जो माल को इन्वेस्ट करने वाला होता है और माल की बढ़ोतरी वगैरह का जो जो इन्वेस्टर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं उनको आप रब्बुल माल कह सकते हैं, यानी इजाफत के साथ आप रब का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, रब्बुल माल, रब्बुल बैत, बैत का रब या माल का रब। ठीक है, लेकिन मुतलकन लफ्ज रब आप किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लफ्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस है। ठीक है, अगर मुतलकन एब्सोल्यूटली जस्ट द वर्ड रब इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे मुराद होगी कि तमाम मखलूकात का रब। ठीक है, और इसको इस्तेमाल करने से मना फरमा दिया। तो फरमाते हैं कि हालांकि ये लफ्ज अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है। वजह यह है कि ऐसे अल्फाज मोहम्मे शिर्क और मुशरिकीन के साथ मुशाबहत पैदा करने का जरिया होते हैं। ठीक है, ये किसी को रब कह देना ये शिर्क नहीं है, लेकिन ये शिर्क का वहम पैदा कर देते हैं और शिर्क मुशरिक के साथ जो है ना मुशाबहत पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से दिस इज समथिंग विच इज नॉट एक्सप्लिसिटली हराम,
एक्सप्लिसिटली हराम नहीं है। एक्सप्लिसिटली हराम क्यों होता, कब होता, जब कुरान मजीद के अंदर कोई आयत आती कि भाई किसी को तुम रब ना कहो, या नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुतवातिर से ये बात हमें नजर हमें मिल जाती कि किसी को रब मत कहो, तब वो चीज हराम हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर लफ्ज हराम इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर लफ्ज नाजायज इस्तेमाल किया है। नाजायज का मतलब ये होता है कि वो चीज जिसको कि उलमा ने मना किया। क्यों मना किया उलमा ने, क्योंकि वो हराम तक पहुंचाने वाली है, इट कैन लीड टू हराम, ऐसी चीज को नाजायज कहा जाता है, ठीक है, और इसको मकरूह भी कहा जाता है। मकरूह और नाजायज सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फरमाते हैं कि ऐसे अल्फाज मौहे में शिरक, यानी शिरक का उसके अंदर वहम आ सकता है, शिरक का जो है वो शायबा आ सकता है, और मुशरिकीन के साथ मुशाबहत पैदा करने का ये जरिया होते हैं। इसीलिए शरीयत मोहम्मदिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना भी ममनू कर दिया गया। शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कुरान मजीद के अल्फाज और नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस मुतवातरा नहीं है, बल्कि जो उम्मत के उलमाए कराम हैं उनके जो इज्तिहाद हैं, ठीक है, उनके जो इज्तिहाद हैं जिनको कि इजमा और कयास कहा जाता है, वो भी शरीयत मुहम्मदिया के अंदर शामिल है। तो शरीयत मुहम्मदिया जो है ये चार चीजों का मजमुआ है, कुरान, हदीस, इजमा एंड कयास, ठीक है। तो इजमा और कयास के जरिए से जो है ना वो चीजें फिर ममनू करार दी जाती है कि भाई ये चीज भी यानी जायज नहीं है, क्योंकि ये भी हराम की तरफ ले जाने वाली चीज है, ठीक है। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में आप जब हयात थे तो औरतों को मस्जिद में आने की तरगीब दी जाती थी, बल्कि तरगीब नहीं दी जाती थी इस तरह से कि औरतों के लिए मस्जिद में आने की कोई ममानियत नहीं थी, औरतों के लिए बाकायदा इंतजाम था, बाब निसा, जिससे कि आजकल उम्मत के मर्द दाखिल किए जाते हैं। उम्मत के मर्द आजकल मस्जिद नबी में कहाँ से दाखिल होते हैं, बाब निसा से दाखिल होते हैं, औरतों के लिए जो मखसूस दरवाजा था। तो हमारे लिए तो इसके अंदर एक बहुत इबरत वाली बात है कि वाकई हरकतें औरतों वाली शुरू कर दी हैं, औरतों की तरह से लड़ते हैं, औरतों की तरह से कीना रखते हैं, औरतों की तरीके से जज्बात से मغلوب हो जाते हैं, राइट, और चूड़ियां पहनी हुई है। आम अंडरस्टैंडिंग क्या है, चूड़ियां पहनी हुई है, करना कराना कुछ भी नहीं है। तो जब तुम अमलन औरत बन चुके हो तो अब तुम्हारे साथ बर्ताव भी औरतों वाला किया जाएगा, तुम्हारे साथ बर्ताव भी औरतों वाला किया जाएगा और किया जा रहा है, ठीक है। तो उस जमाने में तो बाबुन निसा था, तो बाबुन निसा से औरतें आती थी, कोई ममानियत नहीं थी। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए और सहाबाए कराम का जमाना आया, उमर रजी अल्लाह तआला का जमाना आया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का जमाना, तो ऐसा जमाना था कि जिसके अंदर जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को निस्बत इत्तेहादी हासिल थी नबी अलैहिस्सलाम के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना भी जो है ना वो मोर और लेस वैसा ही जमाना था, आप रजी अल्लाह तआला का जमाना भी, ठीक है। लेकिन उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने के अंदर एक्सपेंशन हुई है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के जमाने में तो दीन की हिफाजत हुई है, एक्सपेंशन हुई है उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में, तब बहुत सारे नए लोग जो हैं वो दाखिल हुए हैं मदीना मुनव्वरा के अंदर, नए नए लोग मुसलमान होकर के दाखिल हुए। अब हालात जो है वो बदल गए, तो उमर रजी अल्लाह तआला जो है वो इस हक में नहीं थे कि औरतें जो है वो मस्जिद जाया करें। उमर रजी अल्लाह तआला कौन थे, सहाबी रसूल तो थे, लेकिन उनके ऊपर वही नहीं आती थी, उनके ऊपर वही नहीं आती थी। तो उमर रजी अल्लाह तआला जस्ट लाइक ऑल द अदर सहाबा, वो उम्मत के उलमा में से थे, वो उम्मत के उलमा में से थे, और उलमा ने वक्त के हिसाब से, जमाने के हिसाब से इज्तिहाद किया कि अब औरतों का मस्जिद नबी के अंदर आना। अच्छा, बाकी मस्जिदों में तो पहले भी औरतें नहीं जाती थी, बाकी मस्जिदें, मस्जिद मदीना मुनव्वरा के अंदर सिर्फ एक मस्जिद नबी की थोड़ी थी, इतनी सारी और मसाजिद भी थी, मस्जिद कुबा नहीं थी क्या उस जमाने में, मस्जिद क़िबलतैन क्या नहीं थी उस जमाने में, और कितनी सारी दूसरी मस्जिदें थी। औरतें जो हैं वो सिर्फ मस्जिद नबी में जाया करती थी, उसके अंदर भी उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मना कर दिया औरतों को आने से, और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन जो कि दूसरी मुज्तहिदा थी, उस जमाने की, उन्होंने तायीद करी कि वाकई अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हालात को देखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसकी इजाजत ना देते। ठीक है, तो औरतों का जाना जो है फिर ममनू हो गया या नाजायज हो गया, क्योंकि इट वॉज लीडिंग टू फितना, इट वॉज लीडिंग टू फितना। असल गुना क्या है? जिना का गुना। असल गुना जिना का गुना है, जो कि हराम है, लेकिन ला तक़रबुज़ जिना का हुक्म कि भाई जिना के करीब भी ना जाना। तो इस तरीके से जो है वो किसी चीज को ममनू करा दिया जाता है, और ये ममनू करा देने वाले उलमाए उम्मत होते हैं, जिनको कि आजकल डिरोगेटरी तरीके से मौलवी साहब कह करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो लिखा है, इन मकारम में अखलाक यू मेंशन दैट इफ यू डोंट हैव मैंडेट टू गिव इस्ला देन यू कैन एडवाइज विद निया ऑफ सिला रहम, यू कैन एडवाइज विद द निया ऑफ सिला रहम। आई थिंक यू हैव गॉट इट कंफ्यूज। ठीक है, यू डोंट हैव द मैंडेट टू गिव इस्ला देन यू कैन एडवाइज विद द निया ऑफ सिला रहम, आई थिंक यू हैव गॉट इट कंफ्यूज। ठीक है, तो अभी रहने दें इसको, कभी मौका मिलेगा तो फिर आपसे डायरेक्ट पूछ करके फिर बात करेंगे। आगे फरमाते हैं कि सही मुस्लिम की हदीस में है कि कोई गुलाम अपने आका को अपना रब ना कहे और कोई आका अपने गुलाम को अपना बंदा ना कहे, मगर ये खसूसियत शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिसमें शिर्क की ममानियत के साथ ऐसी चीजों की भी ममानियत कर दी गई है जिनमें जरिए शिर्क बनने का एहतमाल हो। ठीक है, यानी जो पिछली उम्मतें थी नबी अलैहि सलाम से पहले जो 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 अंबिया होते थे उनकी शरीयत के अंदर जो है ना वो ये असबाब को बंद करना कि भाई कौन सी चीज हराम की तरफ ले जाने वाली है, उसकी इतनी ममानियत नहीं थी, बल्कि जो असल हराम चीजें थी उन्हीं की ममानियत थी। ठीक है, तो मकरूहात का कॉन्सेप्ट नहीं था पिछली शरीयतों के अंदर। मकरूहात का जो कॉन्सेप्ट है वो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है। ठीक है, ये इसकी वजह भी क्या है? क्योंकि पिछली उम्मतों में एक नबी जाते थे, दूसरे नबी आते थे, दूसरे नबी जाते थे, तीसरे नबी आते थे, तीसरे जाते थे, चौथे आते थे, और हर नबी नबी की तारीफ ही क्या होती है? जिसके ऊपर वही आए, है ना? नबी की तो तारीफ ही होती है कि उसके ऊपर वही आए। हाँ, बाकायदा किताब नाजिल नहीं हो, किताब नाजिल होने वाले तो रसूल कहलाते हैं, तो किताब तो खाली चार पांच के ऊपर नाजिल हुई है या सहीफे नाजिल हुए हैं, बाकी के ऊपर तो बगैर किताब के वही तो नाजिल होती थी ना। ठीक है ना, तो इस वजह से इज्तिहाद की जरूरत नहीं पड़ती थी, उलमाए कराम की जरूरत नहीं थी, नबी खुद आलिम का काम कर रहा होता था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आए, ला नबी या बादी, ना कोई रसूल, ना कोई नबी, ना किसी और किस्म का, इस किस्म का जो भी ये लोग जिल्ली और पता नहीं ये लोग कादियानियों ने निकाले, कुछ भी नहीं। अब कौन रह गया? सिर्फ और सिर्फ उलमाए कराम रह गए। तो उलमाए कराम ने इस दीन के जो जमाने के बदलते हुए हालात के मुताबिक उस दीन को काबिले यानी एप्लीकेबल और काबिले अमल रखना है ना भाई। ठीक है, नई इजादात हो रही हैं, नए लोग दीन के अंदर दाखिल हो रहे हैं, नए इलाकों के अंदर ये दीन जा रहा है। ठीक है ना, अब कैसे नमाज पढ़नी है, समंदर के जहाज के अंदर कैसे नमाज पढ़नी है, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी समंदरी जहाज में नमाज नहीं पढ़ी है, हवा के जहाज के अंदर कैसे नमाज पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ेंगे क्या? भाई नबी अलैहि सलाम ने हवा के जहाज में नमाज नहीं पढ़ी थी, समंदर के जहाज में नमाज नहीं पढ़ी थी, तो भाई अब नहीं पढ़ सकते वहां पे नमाज। अब नमाज के जितने भी साल तक आप बहरी जहाज के अंदर सफर कर रहे हैं, नमाज कोई नहीं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़ी थी। कौन बताएगा कि नमाज कैसे? ऊपर से वही तो नहीं आएगी, वही का सिलसिला तो बंद हो गया, कौन बताएगा? मौलवी साहब बताएंगे ना, उलमाए कराम बताएंगे ना। कैसे बताएंगे उलमाए कराम? मुराकबा करके बताएंगे? नहीं, इज्तिहाद करके बताएंगे, राइट? तो इस वजह से ये खसूसियत शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि इज्तिहाद का दरवाजा इसके अंदर खुला हुआ है। ठीक है, अब जाहिलों वाला इज्तिहाद नहीं, इल्म वाला इज्तिहाद। ये तो जाहिल, ये जो काफिर हैं जो दीन को खत्म करना चाहते हैं, ये तो चाहते हैं कि जाहिलों के लिए इज्तिहाद का दरवाजा खोल दिया जाए, जाहिल बैठ करके इज्तिहाद करे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना? हालांकि वो अपने किसी साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर तो जाहिल को इजाजत नहीं देंगे कि तुम बैठ करके इज्तिहाद करो, दीन में इज्तिहाद करो ताकि दीन का बेड़ा गर्क हो जाए। ठीक है, तो ये खसूसियत शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिसमें शिर्क की ममानियत के साथ ऐसी चीजों की भी ममानियत कर दी गई है जिनमें जरिए शिर्क बनने का एहतमाल हो। ठीक है, یعنی شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں. انبیاء سابقین کی شریعتوں میں شرک سے تو سختی کے ساتھ روکا گیا ہے مگر اسباب و ذرائع پر کوئی پابندی نہیں تھی, اسباب و ذرائع پر پابندی نہیں تھی. اسی وجہ سے پچھلی شریعتوں میں تصویر سازی ممنوع نہ تھی, ٹھیک ہے, مگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے آئی ہے, اس کو شرک سے پوری طرح محفوظ کرنے کے لیے ذرائع شرک, تصویر اور ایسے الفاظ سے بھی روک دیا گیا جو موہمے شرک ہو سکتی ہیں. بہرحال یوسف علیہ السلام کا انہو ربی فرمانا اپنی جگہ درست تھا کیونکہ ان کی شریعت کے اندر کسی کو رب کہہ دینا جو ہے وہ حرام نہیں تھا. ٹھیک ہے, تصویر سازی, ابھی فتح مکہ کے بارے میں انشاءاللہ ہماری سیرت کی کلاس کے اندر بھی آنے والے ہیں واقعات, تو تصویریں جو ہے وہ یعنی بیت اللہ کے اندر بنا کر کے تصویریں رکھی ہوئی تھی. سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر آئے گی, تماثیل رائٹ, تصویریں وغیرہ جو بنائی ہوئی تھی, تو ان سب کی ممانعت نہیں تھی. ہاں, ان کو پوجنے کی ممانعت تھی, ان کے سامنے سجدہ کرنے کی ممانعت تھی, ان کو رب کا شریک ٹھہرانے کی ممانعت تھی, لیکن تصویر اٹ سیلف بنانے کی ممانعت نہیں تھی. لیکن نبی علیہ السلام جب شریعت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر کے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے شدید ناگواری کے ساتھ ان تمام تصاویر کو جو ہے وہ ختم کروا دیا, وہاں کر دیا بلکہ خود, ٹھیک ہے. تو رب کا استعمال, رب کے لفظ کا استعمال جو ہے وہ ان کی شریعت میں منع ہی نہیں تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے جو رب کا اس لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی. اچھا, کوئی سوال ہو اگر کسی کے ذہن میں تو آپ پوچھئے گا. آگے فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع, اسی کو اپنا رب فرمایا اور اچھا ٹھکانہ بھی در حقیقت اسی نے دیا, ٹھیک ہے. یعنی عزیز مصر کو رب کہنے کی بجائے ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی ہو کہ بھائی وہ میرے رب اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے جو ہے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا, تو اس کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے اور ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ممکن ہے, نبی علیہ السلام نے چونکہ کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ یہاں پر رب کا لفظ جو ہے وہ عزیز مصر کے لیے بولا تھا یا رب کا لفظ اللہ کے لیے بولا تھا, اس وجہ سے علماء کرام جو ہے وہ دونوں احتمال بیان فرما دیتے ہیں کہ بھئی اس کا بھی احتمال ہے, اس کا بھی احتمال ہے کہ رب کا لفظ اس لیے استعمال ہوا یا اس لیے استعمال ہوا. آگے فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین, ایک منٹ, ایک اور پوائنٹ تھا جو کہ آگے فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین جیسے سدی اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اس خلوت میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لیے ان کے حسن و جمال کی تعریف شروع کی, کہا کہ تمہارے بال کس قدر حسین ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے, یعنی ڈیکمپوزیشن جو کہ قبر میں شروع ہوتی ہے نا, تو بال جو ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے ختم ہوتا ہے, یا بال کی جڑیں جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنی جگہ چھوڑتی ہیں اور بال جسم سے الگ ہوتے ہیں. پھر کہا کہ تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں, تو فرمایا کہ موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی. پھر کہا کہ تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے, تو فرمایا کہ یہ سب مٹی کی غذا ہے. اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت آپ پر اس طرح مسلط کر دی کہ نوجوانی کے عالم میں دنیا کی ساری لذتیں ان کے سامنے گرد ہو گئیں. صحیح ہے کہ فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے. اللہم ارزقنا ایاہو, اللہ تعالیٰ سے ہم, اے اللہ ہم آپ سے اسی کو بطور رزق کے مانگ, ٹھیک ہے. تو جو مبلغ ہوتا ہے نا اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کی نظر ایک تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو, ٹھیک ہے, کہ بھائی میری محنتیں, میری صلاحیتیں, میری کوششیں یا میری فکریں, ان سے کسی کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے, ان سے کسی کو توفیق ملنے والی نہیں ہے, بلکہ توفیق تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے. میں تو صرف اپنا کام کر رہا ہوں, میرا کام کیا ہے, اللہ کے حکم کو ماننا. اللہ تعالیٰ نے اگر حکم کیا ہے کہ بھائی بلغو عنی, نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم تک یہ حکم فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم میری جو بات ہے نا اس کو آگے پہنچاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا کام ہے اللہ کے حکم کو ماننا، اپنے آپ کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچانا اور اللہ کے پیغام کو آگے تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے. اور دوسرا میرا کام کیا ہے کہ خیر خواہی کی نیت سے پہنچانا، ٹھیک ہے؟ الدین و نصیحہ، کہ یہ دین تو سراسر خیر خواہی ہے. کیا مطلب؟ وہی جو پیچھے بات ہو چکی کہ ایسے نہیں پیغام آگے پہنچا دینا کہ جیسے کہ کوئی ڈاکیا بس خط دیتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا کہ کس کو دیا، اس نے اس خط کو پڑھا نہیں پڑھ سکا، کیا کرا کیا نہیں کرا، نہیں، بلکہ خط کو بلاغ المبین کے انداز میں پہنچانا اور ان کے لیے بہترین سوچ اور بہترین فکر رکھتے ہوئے پہنچانا، یہ کرنے کا کام ہے. توفیق اور ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس وجہ سے جو مبلغ ہوتا ہے نا اس کے لیے لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھے. اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر یہ دین کا کام نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز کیا کہ آخرت کی اس کو فکر رہے، ٹھیک ہے؟ اپنی بھی آخرت کی ہر وقت فکر رہے اور دوسروں کی آخرت کی بھی ہر وقت فکر رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مبلغ تھے، تو ان کو اپنی بھی آخرت کی ہر وقت فکر موجود تھی. تو اگرچہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اتنا تو ان کو، ہاں جیسے کہ آپ کا ماشاءاللہ سوال بھی بالکل وہی ہے جو آج اس کہنے والا تھا کہ انبیاء کے اجسام تو محفوظ ہوتے ہیں، تو پھر یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اپنے جسم کی حفاظت کا، یعنی اس کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے نا، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ ہمبلنس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک تکبر ہے کہ ہاں میرے جسم کو تو کوئی نہیں ہونے والا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، کچھ نہیں ہونے والا میرے جسم کو. نہیں، اپنے بارے میں تو یہی گمان رکھنا کہ نہیں میرا کچھ پتا نہیں. اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مأمون نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ کہ بھائی جس طرح دوسروں کے جسم قبر میں جا کر کے گھل جاتے ہیں، کیا پتا اللہ تعالیٰ میرا جسم بھی قبر میں جا کر کے گھلا دے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ بھی ہے، یعنی ایک تو اس کے اندر یہ ہمبلنس اور ہیوملٹی، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ عمومی بات کری ہے کہ بھائی جو بھی خوبصورتی اس دنیا کی خوبصورتی ہوتی ہے، قبر میں جا کر کے تو وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. آگے کی آیات تک ہمارے پاس وقت ہے تو ہاں شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ہمت بھی وہم بھا لولا ان رآ برہان ربہ کذلک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. ترجمہ کہ اور البتہ عورت نے فکر کیا، ہمت بھی، عورت نے فکر کیا اس کا، یعنی عورت نے اس کی طرف جو ہے نا وہ فوکس کیا یوسف علیہ السلام کی طرف. وَهَمَّ بِهَا، اور اس نے فکر کیا عورت کا، یعنی ان کے ذہن میں خیال آیا عورت کا، ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں خیال آیا اس عورت کا. لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی. برہان یہ نشانی کو کہتے ہیں، یہ سائن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر انہوں نے اپنے رب کا کی نشانی نہ دیکھی ہوتی، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ٹھیک ہے. اب اس کی ظاہر ہے یہ ایک اتنا آسان مسئلہ تو نہیں ہے، تو آگے تفسیر میں یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں کہ ایگزیکٹلی ان الفاظ کا کیا مطلب ہے. تو ابھی تو صرف ترجمہ کر لیتے ہیں کہ کذالک، اسی طریقے سے، لنصرف عنہ، ہم پھیرتے ہیں عنہ اس سے، یا ہم نے پھیر دیا ان سے، السوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین، البتہ وہ ہیں ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے، مخلص بندوں میں سے، ٹھیک ہے، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں. خلاصہ تفسیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن سے ماخوذ ہے. فرماتے ہیں کہ اور اس عورت کے دل میں ان کا خیال عزم کے درجے میں، یعنی یہ تو عزم کر کے آئی تھی نا کہ میں نے نہیں چھوڑنا ان کو، ٹھیک ہے، جم ہی رہا تھا ہمت بھی ہی، اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ کچھ خیال امر طبعی کے درجے میں، یعنی ان کے اندر عزم نہیں تھا، बल्कि अमर तबी जो एक एक बतकाजाए बशरियत, ठीक है, तो वो इनके दिल के अंदर भी कुछ कुछ ख्याल हो चला था, जो कि इख्तियार से बाहर है, यानी गैर इख्तियारी जो एक ख्याल होता है, वसवसा भी जिसको कहते हैं, जैसे गर्मी के रोजे में पानी की तरफ मीलान तबई होता है, गो रोजा तोड़ने का वसवसा तक भी नहीं आता, ठीक है, यानी गर्मी का रोजा होता है, सब प्यास लगी हुई होती है, तो अगर ठंडा पानी सामने आ जाए तो उसकी तरफ इंसान का मैलान होता है, लेकिन इरादा नहीं होता कि मैं इसको पीऊंगा, ठीक है। अलबत्ता अगर अपने रब की दलील को, यानी इस फेल के गुनाह होने की दलील को, जो कि हुक्म शरई है, उन्होंने ना देखा होता, यानी उनको शरीयत का इल्म मा कुव्वत अमलिया के हासिल ना होता, तो ज्यादा ख्याल हो जाना उजुब ना था, ठीक है। यानी अगर ये यहाँ पे खुलासे तफसीर में हजरत ने शरीयत का इल्म मा कुव्वत अमलिया, ठीक है ना, यानी एक तो ये इल्म रखने वाले थे, फकीह थे, सिर्फ ये नहीं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स का इल्म रखने वाले थे, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का इरफान रखने वाले भी थे ना, ठीक है, आखिरत का भी इनके पास इल्म था, शरीयत के अहकामात का भी इल्म था, ठीक है। तो अगर इनके पास ये इल्म ना होता और फिर अल्लाह ताला की यानी मोहब्बत ना होती, कुव्वत अमलिया कहाँ से आती है, अल्लाह की मोहब्बत से आती है, ठीक है, और जहन्नुम के खौफ से आती है कुव्वत अमलिया, तो अगर ये दोनों चीजें इनके पास ना होती है ना ना होती तो ये ख्याल ज्यादा हो जाना उजुब ना था, कोई ऐसी बात ना थी कि इनको ये ख्याल बढ़ना जाता, यानी वसवसे से आगे बढ़ करके ये अमल के लिए अजम की शक्ल इख्तियार ना कर जाता, क्योंकि उसके दवाई और असबाब सब कवी जमा थे, ठीक है, यानी ये जो एक हराम फेल था जिसकी तरफ वो औरत उनको बुला रही थी, तो सारा माहौल जो था ना वो उसके मवाफिक था, ठीक है, दवाई यानी दावत देने वाले और असबाब सब कवी मौजूद थे, मगर हमने इसी तरह उनको इल्म दिया ताकि हम उनसे सगीरा और गुनाह कबीरा कबीरा गुनाह को दूर रखें, यानी इरादे से भी बचा लिया और फेल से भी, क्योंकि वो हमारे बरगुजीदा बंदों में से थे, ठीक है, यानी ये तो एक आजमाइश का और इंतहाई मुश्किल वक्त था ना, तो यहां पर तो यानी ही वॉज हेल्पलेस, ठीक है, लेकिन इससे पहले जो इनकी जिंदगी थी तो वहां पर तो ऐसी आजमाइशें नहीं थी ना, तो वो जो आम हालात थे उनके अंदर ये तकवा इख्तियार करने वाले बंदे थे, ठीक है ना, ये गुनाहों से बचने वाले बंदे थे और नेकी के ऊपर इस्तकामत करने वाले बंदे थे, तो इसकी हमने इनको क्या इनाम दिया कि जब ऐसी सिचुएशन में आ गए कि जिस सिचुएशन के अंदर अपने आप को बचाना किसी के इख्तियार में नहीं होता, हमने वहां पर अपनी खुसूसी मदद का इंतजाम फरमा दिया और इनको बचा लिया उससे, ठीक है। तो जो पहले से अपने आप को, वही बात है जो हमारे मशायफ बताते हैं ना कि भाई आप किसी दुश्मन से फाइट करने के लिए जब आप रिंग में उतरते हैं तो वहां पे जाकर के ट्रेनिंग शुरू करते हैं, या ट्रेनिंग आपने रिंग से बाहर करनी होती है, किसी बहुत बड़े बॉक्सर से आपका मुकाबला है, किसी रेसलर से मुकाबला है, किसी ने? तो ट्रेनिंग तो सारी की सारी रिंग से बाहर करनी होती है, जबकि आपके सामने वो बॉक्सर नहीं होता, राइट, उधर जिसने ट्रेनिंग करी होती है वही रिंग में जाएगा तो वो फिर उसके सामने खड़ा हो सकेगा और उसको जो है वो हराने के भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिसने कहा कि भाई मैं तो रिंग में जाने के बाद ट्रेनिंग शुरू करूंगा, तो क्या होगा फिर, रिंग में जाकर के तो भाई ट्रेनिंग का टाइम नहीं है ना, वहां पर तो फिर उसने आपको एक घूंसा मारना है, आपने उधर ही टेक्निकल नॉकआउट हो जाना है, ठीक है। तो यही मामला कि भाई ये तो शैतान के साथ एक डायरेक्ट बॉक्सिंग मैच था, तो इसकी ट्रेनिंग यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले से की हुई थी, तो अब जब रिंग में उतरे हैं तो वहां पर इनको अल्लाह ताला ने बचा लिया, इसी तरह हम भी अगर पहले से ट्रेनिंग करते हैं अपने नॉर्मल हालात के अंदर, तो फिर जब ऐसी सिचुएशन में अगर खुदा ना खास्ता किसी को आना पड़ गया तो फिर वो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी अल्लाह की मदद से बच जाता है। आगे मारूफ मसाइल में फरमाते हैं कि
اچھا یہ معروف مسائل ہم شروع نہیں کرتے ہیں کیونکہ کلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پوائنٹ تھا جو کہ ساجد سے بھی مس ہو گیا ہے, لیکن جو کہ لکھا ہوا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, پیچھے ہم نے ایک تو وہ دعوت و تبلیغ کے بارے میں کچھ باتیں ریوائز کری ہیں, کچھ اس کے آگے مزید باتیں بھی کریں, اور اس کے بعد پھر جو شریعت محمدیہ کے اندر جو گناہوں کے اسباب کی ممانعت کا سلسلہ ہے جو کہ پچھلی شریعتوں کے اندر نہیں ہوتا, تو اس کے بارے میں بھی آج بات کری تھی, جس کا کہ بڑا یعنی بڑا اپلیکیبل گویا کہ مضمون جو ہے وہ اب آگے آنے والا ہے کہ کیسے جو ہے وہ اسباب کو منع کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر انسان کی حفاظت ہوتی ہے, لیکن جہاں پر اسباب سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جا رہا ہوتا تو پھر وہاں پر گناہ سے بھی بچنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ ہمارے مسائل کے اندر جب ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے تو پھر وہ تفصیل سے بات ہوگی. کیا لکھا آپ نے کہ جیسے نماز سے باہر تقویٰ والی زندگی ہو تو نماز میں خشوع حاصل ہو سکتا ہے. Exactly. ٹھیک ہے, وہی نماز والی ہی بلکہ مثال ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے خیالات آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ ہم نماز میں فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. تو حضرت اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی نماز کے باہر آپ نے اس کے لیے ٹرین کرنی تھی نا. ٹھیک ہے, اور وہ ٹریننگ جو ہے وہ پھر ذکر اذکار, ٹھیک ہے, مراقبہ ہے, ذکر اذکار ہیں, برے ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے, اچھے ماحول کے اندر اپنے آپ کو داخل کرنا ہے. تو یہ ساری محنتیں جو نماز سے باہر کر رہا ہوتا ہے وہ پھر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور جس نے ایسی محنت نہیں کری ہوتی ہیں تو پھر وہ نماز کے اندر بھی دکان کا خیال تو الٹی سیدھی خرافات کا, بلکہ گناہ کبیرہ کے لوگ بیٹھ کر کے نماز کے اندر منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں. چلیں آپ کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.